ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
देश में डायरिया पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से एक बड़ी चुनौती रही है और बाल मृत्यु दर भी इस चुनौती का एक बहुत बड़ा नतीजा रही है। और इसी समस्या के समाधान के लिए लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार ने समय समय पर अभियान चलाए हैं। हाल ही में एक खास अभियान शुरू किया गया है, नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन। ये अभियान देशभर में डायरिया के खिलाफ डायरिया पर नियंत्रण को लेकर विशेष है और आज इसी अभियान के बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
सबसे पहले हम आपसे इस अभियान के मकसद के बारे में समझना चाहेंगे। डायरिया कितनी गंभीर समस्या रही है और नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन किस तरह से डायरिया पर नियंत्रण को लेकर अहम कहा जा सकता है?
देखिए, स्टॉप डायरिया कैंपेन एक बहुत ही अहम कैंपेन है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं 5 साल के कम से कम उम्र के, उसमें जो 2019-20 में सर्वेक्षण किया गया था उसमें यह पाया गया कि लगभग 50,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु डायरिया की वजह से होती है, जो कि 5 साल से कम जो मृत्यु दर है जैसा आपने उल्लेख किया था उसमें लगभग 5.8% जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु डायरिया की वजह से होती है। अब डायरिया एक ऐसा चीज है जिसको हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कैंसर है कि हो गया तो उसमें बड़ा मुश्किल है, पर इसमें तो ये है कि अगर हम एडिक्वेट प्रिकॉशन लें, जैसे कि जो हमने कहा है कि अगर जो है प्रोटेक्शन है कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए मदर को 6 महीने के लिए और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देना चाहिए, हैंड वॉशिंग अगर हो प्रॉपर हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, तो इस सबसे फिर डायरिया पे काफी कंट्रोल हो सकता है
जी।
और इसके लिए अब ये पहले क्योंकि ये कैंपेन केवल 15 दिन का होता था, अब इस बार हमारे जो नए मंत्री जी आए, नई सरकार आई, उनकी भी सूचना यही थी कि हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए, इस पे कैसे हम कर सकें, तो इस बार ये 2 महीने का कैंपेन लॉन्च किया गया है
जी।
तो ये एक काफी बदल है और ये पहली बार 2 महीने का कैंपेन किया गया है और अपेक्षा ये है कि इसके परिणाम अच्छे दिखेंगे और फिर हम इसे आगे भी चलाएंगे।
आपने 15 दिन के एक महत्वपूर्ण अभियान की चर्चा की जो 2014 में शुरू किया गया था डायरिया के नियंत्रण को लेकर और लगातार ये अभियान 10 साल तक चलता रहा है, और इस अभियान में जो लक्ष्य रखे गए थे कैसे उन लक्ष्यों को और ज्यादा धरातल पर लाने के लिए और तेज गति से उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये जो नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन है उसमें मददगार साबित हो रहा है?
हाँ, तो यही उद्देश्य है क्योंकि ये जो पहले 10 साल का कैंपेन चला उसके अंदर जो हमें अब जो भी उसके अंदर अवलोकन किया या जो उसकी समीक्षा हुई उसके हिसाब से लगा कि मॉनसून के पीरियड के अंदर ज्यादा क्वालिटी ऑफ वाटर की या जो उसके अंदर इन्फेक्शन की जो केसेस हैं वो मॉनसून के अंदर ज्यादा दिखाई देते हैं, तो ये कैंपेन हमें मॉनसून के अंदर अगर हम अधिक समय के लिए चलाएंगे तो इसका परिणाम उत्तम होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार जो हमारी पूरी जो एक्टिविटी थी वो 15 जून से थी 1 जुलाई तक, और 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक 2 महीने का जो पीरियड है जिसमें ज्यादा करके प्रदूषित पानी और इस तरह का जो केसेस मिलते हैं, तो इसके अंदर ये हमने कैंपेन चलाया है। और पहले 1 ORS पैकेट दिया जाता था, इस बार 2 ORS पैकेट और जिंक टेबलेट जो भी 5 वर्ष से कम बच्चों के जो घर हैं वहां पर माताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये भी ये जो अनुभव है पिछला उसी के आधार पर है कि अगर 2 ORS पैकेट हम उपलब्ध कराते हैं तो आउटकम्स बेटर होंगे, क्योंकि अगर बच्चे को दस्त लगते हैं या कुछ और होता है तो उसके अंदर 2 ORS पैकेट से माता कम से कम 48 घंटे तक उसको देख सकती है कि भाई उसकी परिस्थिति ठीक हो रही है, सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होता है तो वो आशा वर्कर को बता सकती है, उसको आगे पीएससी वगैरह ले जाएगी, पर क्योंकि नहीं तो जो है अगर एक ही रहता है तो अगर वो खराब हो गया कुछ और हो गया तो उसमें दिक्कत आती है, तो यही इसी अनुभव को देखते हुए इस बार जो है ये बदल किया गया है
जी। 2 चरणों में इस अभियान को रखा गया, एक तो तैयारी का चरण और एक अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करने का चरण। इनके बारे में आप विस्तार से बताएंगे कि कैसे पूरे कैंपेन को डिजाइन किया गया और कैसे देश भर में इसको लागू किया जा रहा है जमीनी स्तर पर?
जो तैयारी का वो था वो 15 दिन का था, 15 जून से लेकर 1 जुलाई तक, और फिर 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये जो है इम्प्लीमेंटेशन का है, क्योंकि इस बीच में हमने यहां के केंद्र सरकार के 6 विभागों ने जो इससे संबंधित है जिनका ग्रामीण भाग में और बच्चों से संबंध आता है उन्होंने एक ज्वाइंट पत्र लिखा सचिवों ने जो कि मुख्य सचिवों को, जिसमें महिला बाल कल्याण, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, ऐसे कई विभाग थे। और साथ ही हमने भी जैसे अपने हेल्थ के लोगों से चर्चाएं करी फील्ड लेवल पे कि कैसे इसको कैंपेन को करना है, वैसे ही बाकी विभागों ने अपने लोगों से बात करी और वहां पर उन्होंने अपने इंटर्न अपने लोगों से बात करी कि उन्होंने कैसे करेंगे, और फिर एक ओवरऑल एक जो है बीसी हुई जिसके अंदर ये कि कन्वर्जेंस की सब विभाग मिलकर कैसे जो है ग्रामीण स्तर पर कैसे ये इसको स्टॉप डायरिया को आगे ले जा पाएंगे, तो ये इसका सब तैयारियां हुई। और फिर इसमें आईसी जो कैंपेन है वो पूरा हमारे नेशनल हेल्थ मिशन ने बनाया, उसके अंदर वीडियो बनाए गए हैं बाकी कैंपेन की, माताओं को किस तरह से जो है उसके अंदर अपने बच्चों का ध्यान रखना है, किस तरह से क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी है, कैसे इसके अंदर अगर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, तो इस तरह की चीजों को पूरा उसमें जो है और विविध भाषाओं में उसको बनाया गया है, वीडियो भी बनाए गए हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आशा वर्कर की ट्रेनिंग के लिए है, जो वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए, कुछ माताओं की ट्रेनिंग के लिए, तो हर तरह की चीजें उसमें उपलब्ध कराई गई।
जैसे हमने सरकार के कई अभियान देखे हैं जिसमें अब बिहेवियर चेंज पर फोकस है, व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अब इस तरह के अभियान जो हमारे देश में स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसको लेकर व्यवहार परिवर्तन को लेकर कुछ नया नजरिया दे रहे हैं, जैसे डायरिया को लेकर भी आपने बताया कि ORS के वितरण और घरों में किस तरह से साफ सफाई और समस्या है उसके समाधान तलाशने हैं, तो ऐसे में बिहेवियर चेंज में कैसे ये अभियान भूमिका निभा रहा है?
देखिए ORS तो तब है कि अगर सपोज उसको दस्त लग जाता है, पर व्यवहार परिवर्तन यही है कि कैसे सैनिटेशन मेंटेन करना है, किस तरह से क्वालिटी ऑफ वाटर को कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से बच्चे का जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉशिंग, अब ये बड़े साधारण चीजें कि हैंड वॉशिंग करे, तो ये व्यवहार परिवर्तन है और ये सब जो है आईसी मटेरियल में दिया गया है। आशा वर्कर और बाकी जो वर्कर्स हैं वो भी हमारे माताओं को मिलकर इस तरह का बताएंगे कि कैसे करना है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमारे शिक्षण से हर चीज से लिंक्ड है, रिलेटेड है, और ये लॉन्ग टर्म है। अब ये पिछला कैंपेन भी हमारा स्टॉप डायरिया का 2014 से 2024 तक चला है, अपेक्षा है कि अब जो दो महीने का कैंपेन है इसके परिणाम अच्छे रहे पिछले कैंपेन से, तो हम इसे आगे दो महीने का ही चला के आगे चलाएंगे। और व्यवहार परिवर्तन तो शिक्षण से लेकर हर चीज में जुड़ा हुआ है, शिक्षण मंत्रालय भी इसका भाग है, तो स्कूली शिक्षा जो विभाग है वो भी इसका भाग है, वुमेन एंड चाइल्ड जो कि आंगनवाड़ी चलाते हैं वो भी इसका भाग है, तो हर चीज में बच्चे का इंटरेक्शन, माताओं का इंटरेक्शन वो बहुत महत्वपूर्ण है।
आपने जैसा कि बताया कि अग्रिम पंक्ति के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनका इसमें बहुत योगदान है। एक और रोचक गतिविधि है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को इसमें शामिल किया गया है और वहां पर ORS सर्विस के कुछ सेंटर्स की इसमें एक अनूठी पहल है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे ये आंगनवाड़ी केंद्रों के रोल को इसमें बहुत बड़ी अहमियत के साथ देखा जा रहा है।
क्योंकि ये कैंपेन जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और आपको ज्ञात ही है कि ये जो बच्चे हैं ये आंगनवाड़ी में जाना शुरू करते हैं, 3 वर्ष तक आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे जा रहे हैं और वो तो वहां कम से कम 3-4 घंटे दिन में जाते हैं, तो उनको जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसको पूरी तरह से इसका पता रहे, और वो अगर बच्चे में किसी में भी कुछ अगर देखती है कि अगर जो बच्चा आ रहा है अगर उसको ऐसा लगता है कि इसमें, तो उसे ही ये पता चले कि भाई इसको अभी कुछ और करने की जरूरत है या उसको कुछ देने की जरूरत है। और बाकी जैसा आपने कहा आईसी उसके अंदर बहुत, उसके अंदर व्यवहार परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बचपन से ही अगर सिखाया जाए कि भाई हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और पानी जो आपको लेना है वो किस तरह के स्रोत आपके रिलायबल स्रोत है, वहां से कैसे पानी लेना है, तो मेरे ख्याल से बचपन में जो चीज सीखते हैं आप वो हमेशा आपके मन में हमेशा ही रहती
है। जी बिल्कुल। और इस अभियान के जो मुख्य इंडिकेटर्स हैं उसमें बहुत सी चीजों पर फोकस है जिसमें प्रमुख तौर पर जन भागीदारी की तो हमने चर्चा की ही, लेकिन उसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, तो आपको लगता है कि जैसे अगर इस अभियान को ये सफल होता है, निश्चित रूप से सफल होगा, तो उसमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है वो भी आगे चल के और ज्यादा सुदृढ़ होगा और एक मॉडल बन सकता है कैंपेन आगे चल के धरातल पर स्वास्थ्य सेवाओं को और स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग के एक मॉडल के तौर पर?
जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली प्राइमरी हेल्थ के अंदर, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है पिछले 10 वर्षों में, और अब आपको पता होगा कि अब लगभग 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर
जी
आज ग्राउंड लेवल पे चालू है, जिसमें 1,35,000 से ऊपर सब सेंटर है, और एक सब सेंटर पे पहले जो कि सब सेंटर पे एक ANM रहती थी, अब वहां पर आशा वर्कर से लेकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ANM और बाकी और भी स्टाफ और बहुत सी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करा दी गई हैं। और पहले जो कभी 9 करोड़ का कभी एक समय में कभी उस पर फुटफॉल होता था, वो 9-10 गुना बढ़ के पिछले वर्ष मेरे ख्याल से 110 करोड़ या 120 करोड़ कम से कम उसके ऊपर फुटफॉल था, तो वो बहुत बड़ा फर्क उस पर अंतर आया है क्योंकि वहां सुविधाएं बहुत सी उपलब्ध हैं। और ये अब जो आशा वर्कर है वो भी बड़ी मोटिवेटेड है ANM, क्योंकि सबके ऊपर सबके पास, और अब जो है जो विविध पोर्टल्स हैं, डिजिटाइजेशन भी काफी हो गया है, उनके पास हर चीज के इन्फॉर्मेशन है, बाद 5 साल के बच्चे कौन है, उनकी कितना टीकाकरण हुआ है, ये सब उनके पास इन्फॉर्मेशन है, वो आसानी से उसके पास जा सकती हैं, संपर्क में रहती हैं, और मतलब उनको पूरा मोटिवेशन एजुकेशन पूरा वो कराते हैं, ओआरएस टेबलेट किसको दे रहा है पूरा का पूरा वहां पर रहता है। और ये हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केंद्र जो पिछले 5-10 वर्षों में जो फर्क आया है उसी का द्योतक है। और आंगनवाड़ी भी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आंगनवाड़ी की भी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है। उसमें भी जो उनका पोषण ट्रैकर है उसमें पूरी की पूरी हर बच्चे की इन्फॉर्मेशन एक ऐप के ऊपर उपलब्ध है कि इस बच्चे के क्या ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, किस तरह से उसमें पोषण ट्रैकर बहुत ही अच्छा ऐप बनाया गया है। तो और हमारी भी आगे अपेक्षा यही है कि जो हमारे यहाँ के जो इम्यूनाइजेशन के जो पोर्टल है, आरसीएच के जो पोर्टल है, जो हम कुछ दिनों में यूविन लॉन्च करेंगे, उसको पोषण ट्रैकर से लॉन्च करें और फिर आगे जब बच्चा स्कूल में जाए तो वहां उसकी जो हेल्थ चेकअप होते हैं तो वो सब एक कंटिन्यूम के अंदर बने और एक बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड पूरा उपलब्ध रहे। हमारे देश में 3 करोड़ बच्चे हर वर्ष जन्म लेते हैं, तो अगर हम इस तरह का रिकॉर्ड हेल्थ रिकॉर्ड आज भी शुरू करें तो अगले 10 वर्षों में हमें 30 करोड़ भारतीयों का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल उपलब्ध होगा।
जी,
ये हमारी अपेक्षा।
जी जी, और जैसे आपके मंत्रालय के मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम हैं, नेशनल हेल्थ मिशन पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, वो भी इसमें समर्थन करेगा इस अभियान की सफलता में, जिससे कि एक पूरा जैसा कि आपने बताया सर्वे डेटा है वो एक काम आएगा इस अभियान में।
जी हाँ बिल्कुल, अब मिशन इंद्रधनुष में भी जैसे रोटा वायरस का जो है इंट्रोड्यूस किया गया था वैक्सीन, तो उसका भी बहुत परिणाम पड़ा है। और बाकी तो खैर वैसे क्योंकि ये जो हमारा डाटा है जो चाइल्ड मोर्टेलिटी का, ये भी RFSHS 5 पे है आधारित जो 2019-20 में हुआ था। पर अब जो है पाइप वाटर सप्लाई, अब ये भी इंटीग्रेटेड रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात है, पाइप वाटर सप्लाई बहुत अधिक घरों में पहुंच गई है पिछले 5 वर्षों में, तो उसका भी मेरे ख्याल से परिणाम अब जब हमारा RFSHS 6 आएगा तो उस पर दिखाई देगा।
जी, राज्यों के साथ कैसा इस अभियान को लेकर तालमेल है, राज्य सरकारों और जो दूसरे विभाग मंत्रालय हैं, जैसे आपने जल जीवन मिशन का ही जिक्र किया और स्वच्छ भारत अभियान और तमाम जो अभियान हैं वो कैसे एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे इस अभियान को लेकर जमीनी स्तर पर लागू करने में?
जल जीवन मिशन तो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व ही है, उनके साथ तो हमारा पत्र भी गया और राज्य सरकारों के साथ हमने कई VC करी, हमने हेल्थ की तरफ से अपनी VC करी जिसमें बाकी विभाग भी केंद्र सरकार के सम्मिलित थे और वो जो विभिन्न विभाग है वो अपने स्तर पर भी कर रहे हैं। और राज्य सरकार के जो बच्चे हैं वो तो भारत के नागरिक है, तो उसमें कोई केंद्र और राज्य का प्रश्न नहीं है, तो चाहे भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही बच्चों का हित चाहती है। तो राज्य सरकार भी इसमें पूरी तरह से इसमें इस कैंपेन में जुड़ी हुई है, बहुत से राज्यों ने मुख्यमंत्री के हाथों से लॉन्च कराया है। एक बार मुख्यमंत्री लॉन्च करते हैं तो राज्य के सभी विभाग उसमें, जैसे केंद्र के सभी विभाग इसमें सम्मिलित है वैसे ही राज्य के भी सभी विभाग इसमें सम्मिलित होते हैं और हमें राज्यों से बहुत अच्छा इसमें फीडबैक मिल रहा है और बहुत सहयोग मिल रहा है।
देश भर के तमाम दूर दराज के इलाकों में हमारे बहुत से श्रोताओं गांवों में भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कोई संदेश आप देना चाहेंगे इस अभियान के हवाले से या डायरिया को लेकर श्रोताओं को?
तो डायरिया एक प्रिवेंटेबल, एक जो है रोकथाम जिसकी हम कर सकते हैं आसानी से, और इसके लिए ये कैंपेन है और हमें पूरी आशा है कि जो हमारे माताएं हैं जिन तक ये आवाज जा रही है वो इसका पूरा स्टॉप डायरिया कैंपेन का लाभ उठाएंगी। जो भी उनके पास मटेरियल जा रहा है वो अपना जो है किस तरह से हैंड वॉशिंग, अपने हाथों को कैसे धोएं, किस तरह से पानी का, किस तरह से अच्छा पानी का यूज करें, अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो कैसे क्या करें, ये सब जो उपलब्ध है उसका पूरी तरह से अपना वो यूज करेंगी और इस वर्ष हमें इसका बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है।
बहुत धन्यवाद सर, नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन के बारे में आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।